एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जिस किताब की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं वो है एन नेपोलिटानो का उपन्यास हेलो ब्यूटिफुल। ये हाल के समय की काफी चर्चित किताब रही है।
हाँ, और इसकी वजह भी है। बिल्कुल, नेपोलिटानो जानी जाती हैं इंसानी जज्बातों को, खासकर जैसे दुख है या मुश्किल हालात से उबरने की कहानियों को बड़ी गहराई और हमदर्दी से कहने के लिए।
उनका पिछला उपन्यास डियर एडवर्ड याद है?
हाँ, हवाई जहाज हादसे में अकेले बचे उस बच्चे की कहानी, कमाल की मतलब संवेदनशीलता थी उसमें।
बिल्कुल, और हेलो ब्यूटीफुल उसी कड़ी को जैसे आगे बढ़ाता है। मार्च 2023 में आया और आते ही ओपरा विनफ्रे के बुक क्लब की 100वीं पसंद बन गया।
जी,
ये कहानी है शिकागो में बसे एक इतालवी अमेरिकी परिवार की, पड़ावानो परिवार की। चार बहनें हैं और उनके जीवन में एक बाहरी शख्स आता है, विलियम वॉटर्स।
कहने को तो ये एक पारिवारिक कहानी है, पर इसमें पढ़ते बहुत हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये लुइजा मे अल्कॉट की जो क्लासिक है लिटिल विमेन,
हाँ,
उसको एक तरह से आज के जमाने में फिर से जीती है।
वही चार बहनों का ताना बाना, उनका आपसी प्यार, वो सब है।
लेकिन मैपलिकानो इसे 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के शिकागो में ले आती हैं,
बिल्कुल,
और इसमें मानसिक स्वास्थ्य जैसी जो जटिलताएं हैं उनको बड़ी बेबाकी से बुनती हैं। ये खास बात है।
सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास की कहानी के उतार चढ़ाव, इसके किरदारों का सफर, खासकर विलियम, जूलिया और सिल्वी के, और उन गहरे सवालों को समझें जिनसे ये कहानी जूझती है।
जैसे प्यार की हदें क्या हैं, परिवार असल में होता क्या है,
और क्या टूटा हुआ हमेशा के लिए टूट जाता है?
तो चलिए माहौल से शुरू करते हैं। शिकागो का पिल्सन इलाका, 1970 का दशक। हाँ, पड़ावानो बहनों का घर। जूलिया है, सिल्वी है, और फिर जुड़वा बहनें हैं सिसिलिया और एमिलीन। उनका घर मतलब शोर गुल, हंसी मजाक और गहरे अपनेपन से भरा है।
माँ बाप चार्ली और रोज के साए में ये बहनें एक दूसरे के लिए जैसे एक किला हैं।
बिल्कुल, उनकी अपनी दुनिया है जहां बाहर की मुश्किलें ज्यादा पैठ नहीं बना पाती। एक मजबूत आपस में गुथा हुआ परिवार है ना।
और इसी किले में, इसी गर्मजोशी भरी दुनिया में कदम रखता है विलियम वॉटर्स। वो इन सबसे कितना अलग है ना?
बिल्कुल, विलियम वो बास्केटबॉल स्कॉलरशिप पर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी आया है, शान सा, अकेला सा।
उसका बचपन पड़ावानों बहनों से एकदम उलट रहा है।
हाँ, अनदेखी और एक हादसे का साया। वो खुद को अंदर से खाली महसूस करता है, जैसे कोई बर्तन जिसे दूसरों का प्यार ही भर सकता है। मतलब वो ऐसा सोचता है।
यहीं से कहानी का केंद्रीय सवाल खड़ा होता है मेरे ख्याल से।
क्या होता है जब एक भावनात्मक रूप से घायल इंसान ऐसे परिवार में आता है जो मानता है कि प्यार हर जख्म भर सकता है। और जूलिया जो सबसे बड़ी बहन है, जो हमेशा सब कुछ ठीक करने में यकीन रखती है,
हाँ, फिक्सर टाइप,
वो तय करती है कि विलियम उसका है, उसे वो संवारेगी।
लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, जाहिर है।
बिल्कुल नहीं। विलियम का अतीत, उसका गहरा डिप्रेशन, जिसे शायद आज हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहेंगे, वो सतह पर आने लगता है।
और पड़ावानों परिवार का जो प्यार का आदर्शवादी नजरिया है,
हाँ, वो विलियम के अंदर के अंधेरे से निपटने के लिए काफी साबित नहीं होता।
कहानी इसी कश्मकश को दिखाती है। क्या प्यार और वफादारी की भी कोई सीमा होती है?
क्या एक मजबूत से मजबूत परिवार भी अंदरूनी बिखराव को झेल सकता है?
और बहनों के बीच एक ऐसी दरार पड़ती है जो सालों तक उन्हें अलग रखती है।
और फिर कहानी खोजती है माफी और सुलह की उन मुश्किल राहों को।
किरदारों की बात करते हैं, क्योंकि ये उपन्यास किरदारों के कंधों पर ही चलता है। विलियम वॉटर्स, उसकी कहानी तो दिल तोड़ने वाली है।
इसे बड़ी बहन कैरोलीन की मौत, उसके माँ बाप इस दुख में ऐसे डूबे कि विलियम उनके लिए जैसे वजूद ही नहीं रखता था।
उसे लगता था कि वो किसी को दिखता ही नहीं, उसका होना ना होना बराबर है।
बिल्कुल,
बास्केटबॉल ही एक सहारा था, जहाँ कम से कम नियमों की दुनिया साफ थी और उसका कद, उसकी फिजिकल प्रेजेंस मायने रखती थी।
तो जब वो परावानो परिवार से मिलता है, खासकर जूलिया से, तो उसे पहली बार लगता है कि वो कहीं का है, किसी को उसकी परवाह है।
हाँ, वो जैसे अपनी पहचान उनके प्यार में ढूंढने लगता है।
लेकिन ये पहचान उधार की होती है ना?
हाँ बिल्कुल, जब उसका बास्केटबॉल करियर चोट की वजह से खत्म होता है और फिर पिता बनने की जिम्मेदारी आती है, तो उसका डिप्रेशन उसे घेर लेता है।
वो खुद को खत्म करने की कोशिश तक करता है।
हाँ, और उसकी असल यात्रा तो इसके बाद शुरू होती है, ये समझने की कि खुद की कीमत दूसरों के प्यार या मंजूरी पर निर्भर नहीं करती।
बाद में सिल्वी के साथ उसका रिश्ता एक शांत, बिना शर्त वाले प्यार का होता है,
जहां वो पहली बार शायद खुद को सही मायनों में बनाता है, अपनी कमियों के साथ।
ये बदलाव देखना काफी असरदार है। अब जूलिया की बात करें, वो लिटिल वुमेन की जो मार्च की तरह है, सबसे बड़ी, इरादों की पक्की, सब कुछ संभालने वाली।
हाँ, जूलिया की दुनिया में हर चीज तरतीब से होनी चाहिए। उसकी अपनी जिंदगी और अपने लोगों की जिंदगी के लिए एक साफ नजरिया है, एक प्लान है।
और वो विलियम को भी एक तरह से अपने प्रोजेक्ट की तरह देखती है।
हाँ, जिसे वो अपने प्यार और इरादे की ताकत से ठीक कर देगी। शायद इसके पीछे कंट्रोल की इच्छा है, एक महफूज परफेक्ट जिंदगी बनाने का ख्वाब।
लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, और यही जूलिया का संघर्ष है। वो कमी या नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाती।
और जब विलियम का डिप्रेशन उसके काबू से बाहर हो जाता है, तो वो उसे अपनी और अपनी बेटी एलिस की जिंदगी से एकदम काट फेंकती है।
ये फैसला बहुत कठोर लगता है ना?
बहुत ज्यादा, हाँ। और कहानी हमें दिखाती है कि इस कठोरता की कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है। वो न्यूयॉर्क जाके कामयाब वकील तो बन जाती है, पर भावनात्मक रूप से अकेली रह जाती है।
उसकी यात्रा है नर्म पढ़ने की, अपनी गलती मानने की,
ये समझने की कि सच्चा प्यार परफेक्ट नहीं होता, वो अपनाने से आता है। उसे माफी मांगनी पड़ती है सिल्वी से, और शायद खुद से भी।
और फिर सिल्वी, दूसरी बहन, वो जूलिया से कितनी अलग है?
बहुत अलग। सिल्वी लाइब्रेरियन है, सपनों में खोई रहने वाली। किताबों की दुनिया उसे असली दुनिया की उथल पुथल से ज्यादा रास आती है।
वो बहनों में सबसे ज्यादा हमदर्द है।
वही है जो विलियम को उसकी बाहरी सतह के पार उसके दर्द के साथ देखती है। वो उसे उसके अंधेरे समेत अपनाती है।
और शायद यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जब जूलिया विलियम को छोड़ देती है, तब सिल्वी उसकी देखभाल करने का फैसला करती है।
हाँ, ये प्यार का एक ऐसा कदम है जो परिवार को तोड़ देता है।
बिल्कुल, सिल्वी की यात्रा है किताबों की दुनिया से निकलकर अपनी जिंदगी की कहानी का किरदार बनने की।
विलियम के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे देखभाल से गहरे शांत प्यार में बदलता है। वो अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानती है,
समझती है कि उसकी गहरी हमदर्दी और प्यार करने की क्षमता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा तोहफा है,
भले ही उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े।
और जुड़वा बहनें सिसिलिया और एमिलीन, उनका क्या रोल है कहानी में? वो थोड़ा बैकग्राउंड में रहती हैं क्या?
हाँ, वो जैसे पड़ावानों बहनपने के बाकी रंगों को दिखाती हैं। सिसिलिया आर्टिस्ट है, थोड़ी जज्बाती। एमिलीन देखभाल करने वाली, स्थिर, घर को जोड़े रखने वाली।
वो दोनों जैसे कहानी के हाशिए पर रहकर भी परिवार के धागे को पकड़े रहती हैं, है ना?
हाँ, खासकर तब जब जूलिया और सिल्वी के बीच खाई गहरी हो जाती है। उनकी अपनी अपनी यात्राएं हैं जो दिखाती हैं कि बहनों के इस मजबूत बंधन के अंदर और बाहर अपनी जगह बनाना कितना जरूरी है।
वो एक तरह से परिवार की नब्स की तरह है।
हाँ, जो बताती है कि तनाव के बावजूद बुनियाद अभी बाकी है।
आगे बढ़ने के तरीके को देखते हैं, ये चार हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा मिलन या द यूनियन।
हाँ, ये 70 के दशक के आखिर से 80 के दशक की शुरुआत का दौर है। विलियम का अकेलापन भरा बचपन, उसका शिकागो आना, जूलिया से मिलना, और पड़ावानो परिवार की वो गर्मजोशी।
पिता चार्ली का उसे देखकर कहना, हेलो ब्यूटीफुल।
हाँ, वो महज एक जुमला नहीं, वो विलियम के लिए पहली बार देखे जाने का एहसास है। फिर विलियम और जूलिया की शादी, विलियम का बास्केटबॉल छोड़कर टीचर बनना, सब कुछ एक नई शुरुआत जैसा लगता है।
लेकिन फिर आता है दूसरा हिस्सा, दरार यानी द फ्रैक्चर, 80 के दशक में। यहीं से बुनियाद हिलने लगती है।
हाँ, बेटी एलिस का जन्म होता है। ये खुशी का मौका विलियम के डिप्रेशन को और गहरा कर देता है। जिम्मेदारी का बोझ, पहचान का संकट।
जूलिया उसे ठीक करने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है।
सिर्फ सिल्वी है जो उसके दर्द की गहराई को महसूस कर पाती है। और फिर वो हादसा होता है, विलियम का मिशिगन झील में कूदकर जान देने की कोशिश करना।
उसे बचा तो लिया जाता है, पर जूलिया का भरोसा जैसे पूरी तरह टूट जाता है।
और वो फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देता है।
हाँ, वो विलियम को अपनी और एलिस की जिंदगी से पूरी तरह निकाल देती है। कहती है वो अब उनका हिस्सा नहीं है।
माँ रोज भी जूलिया का साथ देती है, पर सिल्वी इस फैसले को मानने से इनकार कर देती है। वो विलियम का साथ चुनती है।
और यही पड़वानों बहनें जो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। ये पल कहानी में बहुत तनाव और टूटन भरा है, बहुत इमोशनल है।
बिल्कुल।
तीसरा हिस्सा अलगाव या दी एस्ट्रेंजमेंट 90 और 2000 के दशक का है।
मतलब सालों की खामोशी।
जूलिया एलिस को लेकर न्यूयॉर्क चली जाती है, कामयाब होती है पर अकेली। वो एलिस को यही बताती है कि उसके पिता मर चुके हैं।
उधर शिकागो में सिल्वी और विलियम धीरे धीरे एक नई शांत जिंदगी बनाते हैं।
हाँ, उनका रिश्ता देखभाल से शुरू होकर एक गहरे खामोश प्यार में बदल जाता है।
इसी बीच पिता चार्ली बीमार पड़ते हैं, उनकी मौत होती है। पर जूलिया और सिल्वी के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो मिलकर दुख भी नहीं मना पाते, और तभी चाली के बरसों पुराने अफेयर का राज भी खुलता है जो परिवार की परफेक्ट तस्वीर को और धुंधला कर देता है।
और फिर चौथा हिस्सा, हिसाब और सुलह, द रेकनिंग एंड रिकंसिलिएशन, 2000 के दशक के अंत में यही बिखरे हुए धागे जुड़ने शुरू होते हैं।
इसकी वजह बनती है एलिस। अब वो 20 साल की है, उसे पुराने खतों से पता चलता है कि उसके पिता जिंदा हैं।
तो वो शिकागो जाती है?
हाँ, वो शिकागो जाती है, विलियम और सिल्वी को ढूंढती है, अपने पिता और अपनी चाची जिसने पिता को संभाला, उनसे एक नया रिश्ता बनाती है।
एलिस का आना जूलिया और सिल्वी को आमने सामने लाता होगा।
बिल्कुल, सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा सब बाहर आता है, और तभी पता चलता है कि विलियम को कैंसर है, वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं।
ये खबर जैसे सबको झकझोर देती है, परिवार के बिखरे हुए टुकड़े विलियम के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं।
हाँ, मौत की आहट पुरानी शिकायतों को जैसे बेमानी बना देती है। जूलिया पहली बार शायद सिल्वी के प्यार की गहराई और निस्वार्थता को समझती है, और अपने डर और जिद से हुए नुकसान को भी।
विलियम की मौत शांति से होती है, उसके पास वो औरत है जिसने उसे बचाया,
सिल्वी,
वो बेटी है जिसने उसे ढूंढ लिया,
एलिस,
और आखिर में वो बहनें हैं जिन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया है।
उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है, हमेशा के लिए बदल गया है, पर वो फिर से जुड़ गया है।
ये कहानी कई गहरे मुद्दों को छूती है, जैसे परिवार का मतलब क्या है, क्या परिवार सिर्फ खून का रिश्ता है, ये सवाल बार बार आता है।
हाँ, ये उपन्यास इसी सवाल को कुरेदता है, दिखाता है कि परिवार चुनना भी पड़ता है, निभाना भी पड़ता है। विलियम की कहानी यही दिखाती है, वो परिवार पाता है, खोता है, और फिर सिल्वी और एलिस के साथ एक अलग तरह का पर शायद ज्यादा सच्चा परिवार बनाता है।
अंत में लगता है कि टूटा हुआ परिवार भी अगर ईमानदारी और स्वीकृति हो तो पहले से ज्यादा मजबूत शक्ल में जुड़ सकता है।
बिल्कुल।
और मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा, नेपोलिटानो ने इसे बहुत ईमानदारी से दिखाया है, बिना किसी लाग लपेट के, कोई रोमांटिसाइजेशन नहीं।
हाँ, विलियम का डिप्रेशन कोई रोमांटिक उदासी नहीं है, वो एक बीमारी है जो न सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है, और ये भी दिखाती है कि लोग इस पर कैसे अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं।
जैसे जूलिया डरकर उसे दूर कर देती है, कंट्रोल करना चाहती है,
और सिल्वी हमदर्दी से उसे अपनाती है। शायद संदेश यही है कि प्यार का मतलब सिर्फ उजाले को नहीं, अंधेरे को भी गले लगाना है पूरी तरह से।
प्यार, चुनाव और माफी, ये भी केंद्रीय धागे हैं इस कहानी के।
बिल्कुल, कहानी में प्यार के कई रंग हैं, रोमांटिक, बहनों का, माँ बाप का, और प्यार कोई एहसास भर नहीं है, ये एक चुनाव है जो रोज करना पड़ता है।
सिल्वी का विलियम के साथ रहने का फैसला एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्रांतिकारी चुनाव है एक तरह से।
हाँ, और जूलिया को भी सीखना पड़ता है कि प्यार में माफ करना और स्वीकार करना कितना जरूरी है, और माफी कोई एक पल की बात नहीं,
ये एक लंबी मुश्किल प्रक्रिया है।
हाँ, जैसा कि बहनों के दोबारा मिलने में दिखता है।
और पहचान का सवाल, खुद की कीमत समझना, विलियम के लिए ये कितना बड़ा संघर्ष है।
विलियम की पूरी जिंदगी अपनी पहचान की तलाश है, पहले बास्केटबॉल में, फिर जूलिया के प्यार में, और आखिर में खुद अपने अंदर। उसे ये सीखना पड़ता है कि उसकी कीमत बाहर से नहीं, अंदर से तय होती है।
यही बात बहनों पर भी लागू होती है ना?
बिल्कुल, उन्हें भी अपनी पहचान सिर्फ पड़ावानों बहनें होने से आगे बढ़कर बनानी होती है। जूलिया को ये समझना होता है कि वो सिर्फ सब ठीक करने वाली नहीं है,
और सिल्वी को ये कि वो सिर्फ किताबों में खोई रहने वाली नहीं, अपनी कहानी की हीरोइन है।
बिल्कुल,
कहानी कहने का अंदाज भी खास है। नेपोलिटानो हमें किरदारों के मन में झांकने देती हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है ये बताती हैं।
हाँ, वो थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट नजरिया अपनाती हैं, यानी वो हमें विलियम, जूलिया, सिल्वी सबके विचारों और भावनाओं तक ले जाती हैं। इससे हम हर किरदार की मजबूरी, उनके डर, उनकी इच्छाओं को समझ पाते हैं।
किसी एक का पक्ष लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सबके नजरिए से वाकिफ हो जाते हैं।
जी,
और लिटिल विमेन से इसका जुड़ाव सिर्फ सताई ही नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपोलिटानो उस क्लासिक कहानी के ढांचे का इस्तेमाल करके कुछ नया कहती हैं। वो मार्च बहनों के आर्किटाइप यानी मूल रूपों को पाडानो बहनों में ढालती हैं, जूलिया में जो कि महत्वाकांक्षा, सिल्वी में बेथ की हमदर्दी,
जुड़वा बहनों में एमी और मैक के कुछ पहलू।
हाँ, लेकिन वो इसे दोहराती नहीं, बल्कि इन किरदारों के जरिए आज के मुद्दों को उठाती हैं। मानसिक बीमारी से जूझना, औरतों की आकांक्षाएं, प्यार और वफादारी की जटिलताएं, जिन्हें शायद एलकॉट अपने समय में इस तरह नहीं दिखा सकती थी।
ये एक तरह से क्लासिक के साथ संवाद है, बहुत अच्छा।
हाँ,
इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से हुआ है। जैसे बास्केटबॉल विलियम के लिए क्या मायने रखता है?
बास्केटबॉल विलियम के लिए एक व्यवस्था थी, एक पहचान थी, जहां उसे लगता था कि उसका कोई मकसद है, कोई कंट्रोल है। जब वो उससे छिन जाता है तो जैसे उसकी जिंदगी का ढांचा ही बिखर जाता है।
इसी तरह किताबें और लाइब्रेरी सिल्वी के लिए एक पनाहगाह है।
हाँ, उसकी यात्रा किताबों के पीछे छिपने से निकलकर अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने तक की है।
और पाड़ावानों घर, वो उनकी शुरुआती एकता और गर्मजोशी का प्रतीक है।
बिल्कुल, भले ही उसमें दरारें पड़ जाएं, वो फिर भी उस प्यार की निशानी बना रहता है जो उन्हें किसी न किसी तरह जोड़े रखता है।
कुछ संवाद या पंक्तियां हैं जो जहन में रह जाती हैं, जैसे वो टाइटल ही, हेलो ब्यूटिफुल।
हेलो ब्यूटिफुल,
ये चार्ली का अपनी बेटियों को कहने का तरीका है। लेकिन जब वो विलियम से ये कहते हैं तो इसका मतलब गहरा हो जाता है। विलियम, जिसने हमेशा खुद को अनदेखा महसूस किया,
उसे पहली बार कोई उसकी अंदरूनी खूबसूरती को देख रहा है। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये किसी के वजूद को स्वीकारना है, उसे बताना है कि तुम मायने रखते हो।
बिल्कुल।
एक और पंक्ति जो जूलिया के बदलाव को दिखाती है, वो अंत के करीब आती है। उसे लगा था अपने पूरे जीवन में कि वो बहनों में सबसे शक्तिशाली है, पर वो नहीं थी। बहनों में सबसे शक्तिशाली वो थी जो सबसे दयालु थी।
ये जूलिया का बड़ा एहसास है। वो समझती है कि असली ताकत कंट्रोल या कामयाबी में नहीं, बल्कि सिल्वी जैसी खामोश, अटूट हमदर्दी और बिना शर्त प्यार करने की क्षमता में है।
ये उसके किरदार का अहम मोड़ है, जहां वो नरमी और माफी की तरफ पड़ती है।
जरूर।
और विलियम की सोच की ये पंक्ति उसके अंदर के अंधेरे को बयां करती है। दुख बिना खिड़की दरवाजे का एक घर है और ये दम घूटता है।
कितनी सटीक उपमा है। ये विलियम के डिप्रेशन की घुटन और निराशा को दिखाती है, उस विरासत में मिले दुख को जिससे वो भाग नहीं पाता।
और सिल्वी जैसे उस बंद घर में एक रोशनी की किरण लेकर आती है।
इस उपन्यास को पढ़ते हुए पाठक हर किरदार के लिए गहरी हमदर्दी महसूस करता है। कभी कभी दिल टूट जाता है, यहाँ तक कि जूलिया के कठोर फैसलों के पीछे का डर भी समझ आने लगता है।
हाँ, खोए हुए सालों का दुख महसूस होता है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगती है जब परिवार धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगता है। ये कहानी उस परिकथा को झुठलाती है कि प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है।
शायद ज्यादा सच ये है कि प्यार सब कुछ सह लेता है, अगर वो सच्चा हो।
हाँ, और सच्चा जुड़ाव दूसरों की खामियों और संघर्षों को पूरी तरह अपनाने की मांग करता है।
और ये हमें अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने प्रियजनों के साथ उनके मुश्किल वक्त में कैसे खड़े रहते हैं? माफी असल में हमसे क्या मांगती है?
देखभाल करने वालों के खामोश योगदान को ये कहानी सम्मान देती है।
और मानसिक बीमारी को किसी के चरित्र की कमी की तरह नहीं, बल्कि इंसानी अनुभव के एक हिस्से की तरह दिखाती है।
ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी दिल कितना खूबसूरत, कितना उलझा हुआ और कितना लचीला हो सकता है।
वाकई, सच में ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, गहरे दुख और कमियों को अपनाने में भी है।
और ये कि एक टूटा हुआ परिवार भी ईमानदारी और स्वीकृति से फिर जुड़ सकता है, शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। हेलो ब्यूटिफुल हमें मानवीय रिश्तों की जटिल सुंदरता और सहानुभूति व क्षमा की ताकत की याद दिलाता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।